नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एनी से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में किसानों की मांग और भारत रत्न। सरकार को भारत रत्न देने के अलावा किसानों को उनके अधिकार भी देने चाहिए। आखिर उनकी मांग भी तो बहुत ही छोटी सी है कि उन्हें उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिले। हालांकि किसानों की मांग का आधार भी MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिश है, जो आज से करीब 4 दशकों पहले दी थी। इन 4 दशकों में न जाने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का वादा करके न जाने कितनी सरकारें आई और गई। वर्तमान सरकार भी, जिसने 2014 में चुनाव में इन सिफारिशों को लागू करने का वादा किया गया था, परंतु आज भी देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और सरकार द्वारा उन्हें रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेटिंग, कटीले तारे व अन्य संसाधन के माध्यम से उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ साहब जुड़े हुए। सर, मोबाइल में स्वागत सर आपका।
जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई व्यक्ति है तो इस भारत का अन्नदाता भारतीय किसान है, और जिसकी जिस तरह से दशा और दिशा है, तो उस विषय पे आज परिचर्चा में मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी सर। सर, एक और किसानों की मांग और दूसरी ओर भारत रत्न, क्या देखते हैं? साथ ही सर, देश के अनेक राज्यों में किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है और क्या सड़कों पर बैरिकेटिंग, कटीले तारे लगाना कितना जायज नजर आता है सर लोकतंत्र में?
देखिये सर, 1952 के बाद से, जब से पहली बार हमारे यहाँ चुनाव हुए थे, उसके बाद से लेकर, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उसमें कृषि को सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाया गया था, तब से लेकर अब तक, क्योंकि एक बार हरित क्रांति हो चुकी है 1966 और 67 में, लेकिन किसानों की जो मूल समस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा रही है, सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा रही है, लेकिन जो अन्नदाता किसान है उसकी समस्या पे उतना उचित कदम मुझे ऐसा लगता है कि नहीं उठाया जाता। केवल एक औपचारिकता होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सरकार को 55% लोग भारत में खेती करते, बड़ा वर्ग है, और उसकी कृषि की जो आय है हमारी राष्ट्रीय आय में केवल 14% है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हर दिन 2000 किसान खेती करना छोड़ रहे। तो ये जो समस्या है, ये समस्या पे विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए बात होनी चाहिए। आप भारत रत्न दे रहे, वो अच्छी बात है, उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश की उन्नति का सबसे बड़ा आधार, क्योंकि आप देखिए हमारा भारत जो है कृषि प्रधान राष्ट्र है, और कृषि प्रधान राष्ट्र में किसानों की समस्याओं पे यदि बात नहीं होती है, उसका समाधान नहीं होता है, तो उसको सड़कों पे उतरना पड़ता है, और सड़कों पे उतरने के बाद प्रशासन और किसान दोनों के बीच की लड़ाई रहती है। सरकार अलग हो जाती है, क्योंकि सरकार का एक हिस्सा है प्रशासन, तो वो दोनों के बीच की लड़ाई होती है, और कई बार किसानों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज कराया जाता है, जिस तरीके से उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, तो क्या किसान केवल गोलियां खाने के लिए, लाठियां खाने के लिए ही देश का एक हिस्सा है, या फिर कोई सरकार इस पर निर्णय करेगी? अभी 2024 में जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की लोकतंत्र की व्यवस्था देखी है कि जब भी कोई समस्या का समाधान करना है, तो हम लोग कब गुणवत्तापूर्ण कार्य की तरफ अग्रसर होते हैं? जब चुनाव आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि चुनाव के समय ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि सरकार की आधारशिला मतदाता है, क्योंकि पूरा भारत का लोकतंत्र है, जनता में निहित है। तो ऐसी स्थिति में जनता सड़कों पे उतर के अपनी मांग मनवा रही है, तो सरकार को उसके ऊपर विचार करना चाहिए।
जी सर। सर, इसके पूर्व भी आपने देखा होगा, एक साल से अधिक दिनों तक किसान दिल्ली के क्षेत्रों में बैठे और अपनी मांगे मनवाने के लिए MSP को लीगल कानून बनाने के लिए मांग रखी गई थी, और इतने दिनों के बाद अभी भी जैसे के वैसे ही अभी भी उन्हीं मांगों को लेकर किसान सड़कों पर हैं। वही साथ में देखते हैं कि जिनको दिल्ली के अन्य हिस्सों में, उनको दिल्ली में अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा, सड़कों पर बैरिकेटिंग लगाई जा रही है। साथ ही अगर 2023-22 की रिपोर्ट देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर 20% हिस्सेदारी भारत के किसानों की है, और 40% जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी पर ही आधारित देखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैंने अभी कहा ना कि भारत का जो किसान है उसका दिशा और दशा कभी भी उन्नत तरीके से उन्नत नहीं की गई, ना तो हमने कृषि को कभी उद्योग का दर्जा दिया, आज भी एक बड़ा वर्ग किसानी परंपरागत तरीके से खेती करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक धरातल पर जाके देखिए, हमारी भारत सरकार कह रही कि हम 2024 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे एक किसान के घर में जाके देखिए, वो जितना लागत लगाता है उस लागत में उसको कीमत तय मिलती, कीमत उसका कोई और करता। हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहां रखी वस्तु का भाव फिक्स रहता है, इतनी की वस्तु मतलब इतनी की है। और किसान जब अपना माल लेके जाता है, कपास लेके जाता है, तुअर ले जाता है, ज्वार ले जाता है, तो व्यापारी उसका भाव तय करता है। ऐसी क्यों ये विडंबना क्यों? और जितने व्यापारिक वर्ग है वो सब राजनीतिक संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या नहीं करेगा? विदर्भ में देखिए 3,000 किसानों ने आत्महत्या कर चुके। ऐसी स्थिति में बताइए साहब कि किसानों की समस्या का समाधान क्या होगा? क्यों नहीं वो सड़कों पे उतर आएगा? और मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के उस कथन को याद करना पड़ेगा। या तो फिर किसान की समस्या का निदान होगा, नहीं तो किसान हथियार उठाएगा। बस
जी जी सर, आपने अभी जिक्र किया कि जय जवान जय किसान, सर एक और जवान भी सड़कों पर है और दूसरी ओर किसान भी सड़कों पर है, क्या देखते हैं सर?
नहीं, जवान भी सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर है, तो ये हमारी देश की नीतियों का क्रियान्वयन का असफलता को दर्शाता है। ये उसकी असफलता है, सरकार की असफलता है। वो गारंटी जरूर दे रहे हैं, हम इसकी गारंटी देते हैं, उसकी गारंटी देते हैं, गारंटी बात की है लेकिन धरातल पे क्या स्थिति। आज किसान बैंक में जाता है तो उसको कितना परेशानी होती है, वो मैनेजर साहब पहले ही बोलते इतना लगेगा। अरे जिसके पास कुछ नहीं है वो इतना लगेगा हमें कहाँ से दे पाएगा? वो मैनेजर जो बैठा है बैंकों में, लाख रुपए पेमेंट है, और भिखारी की तरह वो किसान को बोलता है 50 दे, 500 दे, 1,000 दे। अब ऐसी स्थिति में बताइए किसान कहाँ जाएगा, कौन सुनता? अधिकारियों के पास जाओ तो लगता ही नहीं कि प्रशासन है। ऐसा लगता कि इससे पहले का जो अंग्रेजों का शासन था वो ज्यादा अच्छा था, कम से कम वो गोली तो मारते थे, पर यहाँ तो अपने ही लोग गोली मारते अपने को। प्लाट की रजिस्ट्री करने जाओ तहसील ऑफिस में तो वो सेंडी वाले बाबा बैठे वहां पे, वो पहले ही बोलते हैं इतना लगेगा, उतना लगेगा। और शिकायत करो तो किससे करेंगे? सारा सब एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्था है। मंत्री अलग खर्चा लेता है, कलेक्टर अलग खर्चा लेता है, प्रशासन अलग खर्चा लेता है, वो किसान जाएगा कहाँ? किसान की चप्पल घिस गई साहब ऑफिस में जा जाके, पर अधिकारी के ऊपर कोई नकेल नहीं आई। पटवारी देखो तो पावती की इतने लगेंगे, उतने लगेंगे, फिर ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा बताओ? उसका कौन सुन रहा है? ना तो महेंद्र सिंह टिकट जैसा कोई किसान नेता यहाँ पे हो पा रहा। अभी सब अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए नेतागिरी करते हैं, उनको रेत का धंधा कराना है, उनको सट्टे का धंधा कराना है, उनको जुआ चलाना है, उनको जनता से थोड़ी फायदा, उनको किसान की समस्या को कौन उठा रहा? अभी देखिए पटवारी का रिजल्ट आया, किसने उठाया उस मुद्दे को? युवाओं का कोई आंदोलन किया किसी नेता ने? अब उनको 2024 आएगा तो फिर उनको मतलब सारी चीजों पे ध्यान आएगा कि नहीं हमारा किसान, अरे काय का किसान, बहुत दिक्कत है साहब। मैं समस्या की बात कर रहा हूँ लेकिन उसके नकारात्मक पक्ष नहीं, सच को भी जानना जरूरी है। और किसान का यदि समाधान नहीं होगा ना तो उसका बेटा कहाँ से डॉक्टर बनेगा, कहाँ से इंजीनियर बनेगा? नेताओं के तो बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ रहे, किसान का बेटा कहाँ पढ़ता? गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ टीचर खुद ही नहीं जाता, वहाँ पीरियड नहीं लगते, कविलो नहीं है स्कूलों के ऊपर, ये हालत है हमारी। अरे गवर्नमेंट को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली को देखो, वहाँ का 5-star होटल जैसी शिक्षा, हमारे यहाँ की शिक्षण संस्था देखो कविलुच नहीं है, ग्राउंड में से गाय बकरियां चरती रहती, वहां हम पढ़ते हैं, टीचर आता ही नहीं, वो अपने खेत में काम करने जाता, कई टीचर जैसे पी के आते हैं, बताओ ये स्थिति है साहब हमारी। एक एक 1.5-1.5 लाख पेमेंट लेते हैं टीचर लोग, पढ़ाते नहीं है, तो किसान का बेटा जाएगा कहाँ पढ़ने? तो फिर वो किसान का बेटा देखिए उससे जुड़ी हुई समस्याएं आती, खेती करने को जाता है तो लड़की वाले बोलते कि नौकरी है क्या? यदि नौकरी है तो खेत है क्या? अब बताओ उसके विवाह का विलंब विवाह वाली प्रथा शुरू होगी, समाज में कितनी विसंगतियां पैदा हो रही। तो ये सरकार को इस सारे विषयों पे सोचना चाहिए, अन्यथा समाज की विघटन की स्थिति के लिए जिम्मेदार सरकार होगी साहब।
जी सर, संविधान ने लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार दिया है और देश के कई क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। और आप देखने होंगे या सुना भी होगा कि दिल्ली में भी किसानों को सड़कों पर रोका गया। सर इसको कैसे देखते हैं कि क्या किसानों को सड़कों पर रोकना, क्या लोकतंत्र में आंदोलन करना आजकल कहाँ और कितना नैतिक रूप से देखते हैं?
नहीं देखिए, संविधान में जो हमको बात रखने का, शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने का अधिकार है, लेकिन केरल के न्यायालय ने जो निर्णय दिया था कि हड़ताल पे भी रोक है हमारे, तो ये स्थिति है। पर किसान यदि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कर रहा है, पर होता क्या है, जो मतलब मीडिया है, मीडिया जब उस मामले को उछालती है तो विदेशी स्तर पे इनकी किरकिरी होती ना, क्योंकि इनको इनाम, इनको सम्मान और कितना कितना क्या क्या मिल रहा है कि भाई विकसित भारत, विकसित राष्ट्र भारत आध्यात्मिक गुरु बनने जा रहा है। लेकिन यथार्थ में देखिए, किसान के घर में जाके कभी झांक के देखे सरकार, तो समझ में आएगा कि रात की सूखी रोटी खाता है वो, कर्जा लेके अपना परिवार पालता है, बच्चे की फीस वो कर्जे से देता है, हाँ उसकी वस्तु का भाव वो खुद नहीं तय करता, व्यापारी तय करता है। 7,000 से ऊपर कपास का भाव नहीं मिल रहा था, और कपड़े खरीदने जाओ तो 1,000 रुपया मीटर, 2,000 रुपया मीटर, बताओ फिर किसान दुखी नहीं रहेगा। सरकार ऐसी नीति बनाए कि मैं तो कहता हूँ कि किसान को प्राइमरी सेक्टर में आता है हमारा खेती, तो खेती को उन्नत बनाने के लिए प्राइमरी स्तर पे कुछ काम होना चाहिए, MSP का जो है समर्थन मूल्य वाला, उस पर विचार करना चाहिए, तभी तो ये सब नहीं हो रहा, इसलिए सड़कों पे आ रहे किसान। जी
अच्छा, तो ये थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर किसानों की मांग और भारत रत्न इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही वर्तमान परिवेश में किसान जिस तरीके से अपने अधिकारों के लिए MSP की लीगल कानून बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया, वो वर्तमान स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश के विकास में किसानों का योगदान कितना है, इस विषय पर भी अपनी बात मोबाइल वाणी के साथ साझा की। मधुकर सर, मोबाइल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।
मोबाइल सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।